أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عزیزان امام، آج اپریل 1980 کی 4 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ السبا کی آیت 34 سے ہوتا ہے، 34/34. بعض آباد جو صاحب کا درس میں ایک غلط فہمی کی وجہ سے آ نہ سکے تھے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ پچھلے درس کا موضوع بڑا ہی اہم تھا، ان کا تو تقاضا تھا کہ اسے ریپیٹ کر دیا جائے، دوہرا دیا جائے، لیکن بہرحال درس یا تقریر کو دہرائی نہیں جایا کرتی، وہ ٹیپ کے اندر محفوظ ہے، آپ سننا چاہیں گے تو وہ شیخ صاحب کے پاس ہی وقت چلے جائیے گا. موضوع یہ تھا پچھلے درس میں کہ جہنم میں مکالمہ تھا لیڈروں کا اور عوام کا، حکمران طبقہ کا اور معصوم کا، مذہبی پیشوائیت کا اور عقیدت مندوں کا. جہنم میں تھے یہ سب کے سب. قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ وہاں وہ ایک دوسرے پر اس طرح الزام دھرتے ہیں کہ ہم تمہاری وجہ سے اس عذاب میں گرفتار ہیں. تو اس میں اہمیت اس بات کی تھی جو میں نے عرض کیا تھا کہ مرنے کے بعد کی جنت اور جہنم اور قیامت اور حشر اور اعمال سب بجا اور درست، ان کے اوپر ہمارا ایمان ہے، لیکن ہماری غلط نگہی یہی ہے کہ ہم اس جہنم اور حشر کو قیامت پر اٹھا رکھتے ہیں. وہ برحق ہے، لیکن قرآن کریم کی روح سے جہنم تو اسی دنیا کے اندر بھی ہوتا ہے. اس نے بتایا ہے کہ وہ تو تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوتا ہے. وہ غلط معاشرہ جس میں انسانیت کا شرف اور آدمیت کی تکریم نہ رہے، جہنم ہوتا ہے. اس نے کہا یہ ہے کہ تم اسے نہیں دیکھتے، وہ تو تمہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے. اور اس کے بعد اس نے کہا تھا کہ جن کی آنکھیں کھلی ہوئی ہوں وہ آج بھی اسے دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں کہ اس کے شعلے دلوں کو لپیٹ لیتے ہیں. پھر میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ مکالمے آپس کے کیا ہیں، اور پھر وہ اس جہنم کا ایندھن کون ہے، اس کے شعلے کیا ہیں، باطل کا نظام. اور میں نے کہا کہ قرآن کی روح سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جہاں انسانیت کا شرف، احترام، تکریم نہ رہے، اسے ٹھیس پہنچے کسی طرح سے، کوئی انسان جہاں اپنے آپ کو ذلیل محسوس کرے، تنہا محسوس کرے، وہ معاشرہ جہنم کا معاشرہ ہوتا ہے. اور قرآن کریم نے پھر اس کی تفصیل بتائی تھی کہ اس قسم کے معاشرے کے اندر جن کو احساس ہو جاتا ہے وہ وہاں سے نکلنے کی بھی کوشش کرتے ہیں تو وہاں سے نکل نہیں سکتے، کیونکہ یہ احساس انفرادی ہوتا ہے ایک فرد کا، معاشرہ اجتماعی ہوتا ہے، فرد اس میں جلتے بھولتے رہتے ہیں، اجتماعیت جو ہے وہ اس معاشرے کو جنت میں بدلنے کی کوشش ہی نہیں کرتی کہ وہ اس جہنم کو دیکھ ہی نہیں رہی ہوتی. وہ خوش ہوتے ہیں کہ نہ تیر کمانے ہیں نہ سیال کمی میں، گوشے میں قفس کے مجھے آرام بہت ہے. جس پرندے کو قفس کے گوشے میں آرام محسوس ہونے لگ جائے وہ اس قفس کی تیلیوں کو توڑ کر باہر نکلنے کی کیوں کوشش کرے گا، اسے تو باہر نکال بھی دیں گے تو وہ پنجرے کا دروازہ کھول کے پہنچ کے پھر اندر جانے کی کوشش کرے گا. یہ کیفیت ہو جاتی ہے جب عادی ہو جاتا ہے غلام اور محکوم اس قسم کے جہنمی معاشرے میں. یہ تھا پچھلے درس کا موضوع، اور ان کا تقاضا بجا ہے کہ یہ ایسا تھا کہ اس کو پھر ریپیٹ کیا جائے. وہ باہر ہے، اللہ کا شکر ہے، اب یہ سامان موجود ہیں کہ یہ چیزیں ہوا میں منتشر نہیں ہو جاتی، محفوظ ہو جاتی ہیں، محفوظ رہیں گی. اس لیے ہم اس کے بعد آگے چلتے ہیں. میں نے عرض کیا تھا پچھلی دفعہ کہ اسی سلسلے میں ہی اگلی آیت کو آپ سمجھیے. कि वो जहन्नम के अंदर वो कौन लोग थे। 34वीं आयत है कि वमा अरसलना फी करियत मिन नजीर इल्ला काला मुतरफूहा इन्ना बिमा उर्सिल तुम बही काफिरून। जब भी हमने किसी ऐसी शख्सियत को, रसूल को, नबी को उस कौम की तरफ भेजा जो जहन्नम के शोलों में मुब्तला थी कि वो उसे तंबीह करे, तंजीर दे, उसको उस खतरे से आगाह करे, उस तबाही से वार्निंग दे जो आने वाली है या जो आ रही है, तो उसकी सख्त मुखालफत हुई। कुरान ने कहा वो मार्शल नहीं, यानी ये होता ही रहा है हर रसूल के साथ, हर उस शख्स के साथ कि जिसने गलत राव इंसानों को उस खतरे से आगाह किया जो उनकी गलत रजी के बायस आने वाला था, तो मुतरफीन ने हमेशा उसकी मुखालफत की। ये मुतरफीन कौन, ये हमेशा कुरान कहता है कि किसी कोई भी रसूल ऐसा नहीं जिसके साथ ये माजरा ना गुजरा हो, तो खासतौर पर ये मुतरफीन के मुतल्लिक कह रहा है कि उन्होंने उसकी मुखालफत की। और इन्हीं मुतरफीन के मुतल्लिक शुरू ही मैं अर्ज कर दूं, पुराने करीम ने बताया है जहन्नम के मुतल्लिक, उसकी तफसील देने के बाद वो ये कह रहा है कि उसके अंदर ये जो लोग थे या होंगे, इन्नहुम कानू अबला जाले का मुतरफीन 56/47। ये इससे पहले ये मुतरफीन थे, यानी पहले ही मैंने ये अर्ज कर दिया कि कुरान का ये फैसला एक तो ये कि हर रसूल की मुखालफत की इन मुतरफीन ने, और मुतरफीन के मुतल्लिक बताया कि ये लोग अहले जहन्नम। ये तो कोई अजीब किस्म का तबका हुआ ना, जिस पूरे के पूरे तबके के मुतल्लिक ये कहा जा रहा है कि वो जहन्नम में, ये कौन लोग हैं। मैंने ये अर्ज किया कि हमारे यहाँ जो कुरान करीम सही तौर पे समझ में नहीं आता और उसकी वजह से इस्लाम सही तौर पे समझ में नहीं आता, ये बात ही नहीं कि समझ में नहीं आता सही तौर से, बल्कि गलत इस्लाम समझ में आता है, खिलाफ इस्लाम चीजें इस्लाम बन जाती हैं। क्या वजह है कि कुरान करीम जैसी किताब हमारे पास मौजूद है, महफूज है, एक एक हर्फ पर हक है, इतना पढ़ा जाता है इसको कि दुनिया की कोई और किताब इतनी नहीं पढ़ी जाती, तो इसके बावजूद फिर ये क्या है कि कुरान के खिलाफ सब कुछ समझा जाता है, अकायद इसके खिलाफ, माशरा इसके खिलाफ, मसलक इसके खिलाफ, और ये सब कुछ हम पढ़ते हैं, हुआ क्या हमारे साथ ही? बड़ी अहम चीज है जीवन में समझ, और ये इसलिए भी अहम आजकल हो गई है कि अब बड़ा चर्चा है इस्लाम के हयाए नाव का, नशत सानिये का, रिकमेंडेंस का, कि दोबारा इसको जिंदा किया जाएगा, बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि इस्लाम दोबारा, खुदा का शुक्र है, फजल है, दोबारा जिंदा हो रहा है, ये इस्लाम नहीं जिंदा हो रहा, ये वो चीज है कि जिसके खिलाफ ये हमारा नौजवान तबका जिस इस्लाम से मुतनफर होकर अलग हुआ है, ये उसी को तकलीफ पहुंचाई जा रही है। तो मैंने अर्ज किया है कि ये इसकी बुनियादी वजह क्या हुई, बुनियादी वजह हुई कि कुरान की इब्तदाई तफसीरें या तफसीर मलूकियत के दौर में मुरतब हुई। मलूकियत सिर्फ बादशाहत का ही नाम नहीं होता है, वो एक ऐसा माशरा होता है जिसमें जागीरदारी, सरमायादारी, मजहबी पेशवाइयत और फिर ये बादशाहत से इंसानियत, यानी इंसानी हुकूमत, हाँ वो एक फर्द की हुकूमत हो या अफराद के मजमूए की, जिसे आज मगरबी जमहूरियत कहते हैं, ये होती है मलूकियत। तो हमारी पहली तफसीरें जो मुरतब हुई ये उस जमाने में मुरतब हुई, उस दौर में मुरतब हुई, और उन्हीं तफासीर की रूह से अब हमारे यहाँ फिर उनके तर्जमे भी हुए और कुरान करीम के तराजुम में भी वही इस्तलाहात और वही अल्फाज इस्तेमाल हुए। मुतरफीन तो आपने देखा ना कि ये कितनी अहम चीज है जो बताई गई है कि हमेशा इनकी तरफ से मुखालफत होती रही। और कुरान ने बताया ये है कि ये है वो तबका जो जहन्नम में होगा। तर्जुमा आप देखिए मुतरबीन का, लिखा होगा आसूदा लोग, खुशहाल लोग, यानी आसूदा और खुशहाल सारे जो हैं ये सब जहन्नम में। अब देखिए कि इसके तह में बात क्या हुई। ये जो दौर होता है सरमायादारी और जगीरदारी और मलूकियत वगैरह का, एक तबका जो है वो नहायत आसूदा हाल होता है, खुशहाल होता है, और वो दूसरों की मेहनत की कमाई पर खुशहाल होता है। दूसरे गरीब रह जाते हैं, मुफलिस रह जाते हैं, मोहताज रह जाते हैं। अब गरीब और मुफलिस जो है उसको अगर ये चीज किसी तरह बताई जाए कि तुम्हारे इफलास और गरीबी क्या जिम्मेदार ये तबका है जो तुम्हारी सारी मेहनत की कमाई को डूब के ले जाता है, तुम्हें इस हाल में छोड़ देता है, आप ऐसा करता है, तो वो उसके खिलाफ उठ खड़े होंगे। उस तबके को ये जो गरीब और मुफलिस है, अब जहां वो आते हैं गलत किस्म के नजदी पेशवाइयत वाले, वो इस तबके को थपकियां दे दे के सुनाते रहते हैं कि ये जो गरीबी है और मुफलिसी है ये खुदा के मुकर्रब बंदों की निशानी है। ये जो तुम असूदा हाल लोग देखते हो, खुशहाल देखते हो, सब जन्मी है, चार दिन की दुनिया की घेर है, ये बस घेर लेने दीदी है, आप देखिए आखिरत तुम्हारे हिस्से में है। उनको इससे मुतमईन किया जाता है कि तुम्हारी ही जिंदगी हकीकत में खुदा की रजामंदी के साथ मिलती है, हम आम गए, यही इस्लाम है। ये तबका जहन्नमी है, तुम जन्नत में जाने वाले हैं। और इसके लिए फिर किस्म किस्म की लोगों की रवायात भी, खुद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक ये चीज की इतनी गरीबी की हालत में जिंदगी बसर करते थे, पेट के पत्थर बांधे हुए, 40-40 दिन घर में कोई चूल्हा नहीं जल रहा, ये सब कुछ मैं करूंगा कि ये सब कुछ इस्तेमाल था, सब कुछ होते हुए दूसरों की जरूरियात को पूरी करने के लिए अपने ऊपर कुछ वारिस किया जाए, तो इसको इखलास और गरीबी नहीं कहते। लेकिन बताया ये गया कि अल फक्र व फक्र, कि जो फकर जो है, गरीबी जो है, इखलास जो है, ये बायस फकर है मेरे लिए। फिर इस किस्म की भी रवायात वजह की गई कि हुजूर ने फरमाया कि या अल्लाह मेरी जिंदगी गरीबों में गुजार, मेरी मौत गरीबों में आए, मेरा हश्र भी गरीबों के साथ हो, तो गरीब तो बड़े खुश हो गए ना। कि हुजूर खालिद मआद ने ये दुआ की है तो वो तो ये अपने दिल से चाहते होंगे कि या अल्लाह हमारी गरीबी ना कहीं दूर हो जाए, कि हम मैयत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मारूम हो जाए। मस्त रखो जितरों फिक्र सुहागाई में, इधर तवज्जो ही ना उनकी आने दो, देखें तो ये चीज हो कि हाँ ये है वो तबका जिसके मुतल्लिक कुरान ने कहा था कि ये सब जन्मी है। आप देखते हैं कि कितनी बड़ी साजिशें होती है इस तबके की तरफ। इसीलिए जब भी कहीं फिरौन आता है, मलूकियत आती है, तो उसके साथ हमान भी आता है, उसके साथ कारून भी आता है। उनकी पूरी कोशिश होती है कि हजरत मूसा की अलैहिस्सलाम पेश न जाने दिए की जाए इनके मुकाबले। एक लफ्ज का मुतरफीन का तर्जुमा आपके यहाँ अगर ये असूदा लोग हो गए तो आप देखिए कहाँ से कहाँ बात चली गई। असूदगी और खुशहाली इनकी निगाहों के अंदर खिलाफ इस्लाम, खुदा के कुर्ब के खिलाफ, रसालत मआद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमन्नाओं दुआओं के खिलाफ, और जिंदगी फकर की, फाके की, इखलास की, मोहताजी की, गरीबी की, ये ऐन खुदा की मंशा के मुताबिक, और इसमें वो मस्त होके बैठ गए। ये भी किसी ने ना बताया कि हजूर के मुतल्लिक तो कुरान ने ये पहले तो ये कि कुरान ने दुनिया की जिंदगी की खुशहालियां, आसूदगियां नेमत करार दी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक जो कुरान ने उसवा पेश किया वो बाजादा का आयलन फाग ना, हुजूर को अपनी नेमत को याद दिलाया है कि हमने देखा था तुम्हारी इब्तदाई जिंदगी में तुम वाकई गरीब आदमी थे और हमने तुम्हें गनी बना दिया, قرآن تو یہ شہادت دے رہا ہے, یہ تو نہیں پیش کی جائے گی. پیش یہ کی جائے گی کہ الفقر و فقر, غریبی اور محتاجی میرے لیے باعث فقر ہے, اور وہ جو قرآن کہہ رہا ہے کہ خدا کی نعمت تھی کہ آپ کو غریب بنا دیے. تو ایک لفظ کے میں نے مثال دی ہے اسی پہ جو آج آ رہا ہوں جس کے اوپر, ورنہ آپ دیکھیں گے کہ قرآن کریم سے جو بودھ ہے ہمارا, دوری ہے ہماری, بلکہ اس کے خلاف روشیں ہیں بیشتر حصہ اس کا اس کے اوپر مترفین. قرآن کریم اس دنیا کی زندگی میں قرآن کی حامل قوم کو بلند ترین مقامات پر دیکھتا ہے, انتم العلاؤن یہ مقام دیتا ہے, کوئی قوم ان کا مقابلہ نہ کر سکتا, دولت حشمت قوت سطوت حکمرانی ان تمام چیزوں کی یہ قوم مبارک, اور اتنی بلندیوں کے اوپر کہ کوئی دوسری قوم اس کا مقابلہ نہ کر سکے. لیکن ایک دولت اور حشمت وہ آتی ہے دوسروں کی کمائی, دوسروں کی محنت کی کمائی کو ہتھیار لینے سے. یہ چیز قرآن کے نزدیک سب سے بڑا جرم, کسی کی محنت کا استحصال, ایکسپلوائٹیشن, جسے آپ معاشی نظام کہتے ہیں, وہ قرآن نے دو ہی معاشی نظام بتائے ہیں. ایک نظام وہ ہے کہ جس میں ہر محنت, ہر شخص محنت کرے بجوز ان کے جو محنت کرنے سے معذور ہوں کسی طرح سے, جو محنت کر سکتا ہے اور محنت کر کے نہیں کماتا اور خراب کھاتا. قرآن کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعى, جو محنت کرنے کے قابل ہے اور محنت نہیں کرتا اس کو کچھ نہیں لینا چاہیے, اس کو کچھ نہیں ملنا چاہیے, اسے کچھ نہیں مل سکتا. تو ایک نظام تو یہ ہے, محنت کرنے والا جو ہے اس کے متعلق بھی یہ چیز کہی کہ لا تزر وازرۃ وزر اخرى 53/38, کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, ہر شخص اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا. یہ قرآنی معاشرہ جو ہے یہ اس کی جزیات بیان ہو رہی ہے. ہر شخص جو محنت کرنے کے قابل ہے وہ محنت کرے گا تو کچھ مل سکے گا اس کو, وہ جتنا کچھ ویسے ملنے کی بات ہے نا, جیسے آپ صدقہ خیرات کہتے ہیں, اس میں صدقہ خیرات تو ہوتا نہیں, وہ ذمہ داری رہتی ہے معاشرے کی ان لوگوں کی پرورش جو محنت کرنے کے سے معذور ہو جائیں کسی طرح سے. ورنہ جو محنت کرنے کے قابل ہے, کام کرنے کے, محنت کیوں کہتے ہیں آپ, یہ کوئی قرآن کی روح یا اسلام میں الگ طبقہ نہیں ہوتا, جیسے آج کل ہم کہتے ہیں نا محنت کاش, ہم نے تو ایک طبقہ ہی الگ بنا دیا, وہ بنانا پڑتا ہے سرمایہ دار کو, کیونکہ یہ محنت کاش نہیں ہوتا نا, ایک طبقہ بنایا محنت کاش, اور پھر وہ کچھ ذلیل سا ہو گیا, آہستہ آہستہ انفیریئرٹی کمپلیکس ان کے دلوں میں داخل کر دی انہوں نے, وہ محسوس کرتا ہے اپنے آپ کو کہ یہ بڑے لوگ ہیں ہم چھوٹے لوگ ہیں. محنت کا اسلام میں کوئی دو طبقے نہیں, نہ محنت کرنے والے کے لیے تو ایک ڈنگ کی روٹی بھی نہیں وہ دیتا, ایسا نہیں انسان اعتماد, تو یہ دو طبقے کہاں سے آ جائیں گے؟ یعنی جو محنت نہیں کرتا اس کو تو کچھ ملتا ہی. تو قرآن کی روح سے یہ معاشرہ جو ہے اس میں معاوضہ محنت کا ملتا ہے, معاوضے کا کبھی لفظ نہیں ہے, میں ابھی عرض کروں گا, محنت سے ملتا ہے. اور اس کے برعکس دوسرا نظام ہے معاشی جس میں سرمائے کے اوپر معاوضہ ملتا ہے, محنت کا نہیں, صرف روپیہ انویسٹ کرنے سے بغیر محنت کرنے سے ملتا ہے. یہ کہاں سے ملتا ہے؟ روپیہ جو ہے وہ خالی رکھا ہوا مرغی تو ہے نہیں کہ وہ انڈا دے دیتی ہے پڑا رہے, روپیہ آپ کا 10,000 روپیہ 1,00,000 روپیہ بکس میں بند کر کے رکھیے, جب نکالیے اتنا ہی نکلے گا, بجوز اس کے کہ کوئی آپ کا بچہ نوکر بیچ میں سے اڑا کے نہ لے جائے, اتنا ہی نکلے گا, روپیہ بچے نہیں رہتا. یہ روپیہ جو بڑھتا ہے, یہ بڑھتا کس طرح سے ہے؟ कोई प्रोड्यूस करते हैं ना, वही जिसको कहते हैं कि पैदा करते हैं कुछ, मेहनत इसको कहते हैं, कमाई इसको कहते हैं, पैदा करना, कोई पैदा करने वाला है ना, मेहनत कष्ट सबका, वो पैदा करता है। ये अपने उस रुपए के जोर से जो कुछ वो पैदा करता है इसमें शामिल कर लेता है, इस तरह से इसका रुपया बढ़ता है। ये एक निजाम है। दूसरा, उस निजाम के बरक्स, उसके मुखालिफ जो कुरान ने निजाम कायम किया था उस जमाने में, कुरान के नजूल के जमाने में, ये कैपिटलिज्म या सरमायादाराना निजाम जो है, ये इस्तलाहात अभी राज नहीं हुई थी। कैपिटलिस्टिक सिस्टम जिसे आप कहते हैं, बतौर निजाम के जिसे आप कहते हैं, सरमायादारी का लफ्ज तो उसमें आ नहीं सकता था, ये तो फारसी वालों का लफ्ज। कुरान करीम ने इसके लिए जो इस्तलाहात अपने इस्तेमाल की हैं, ये जो निजाम है जिसमें सिर्फ रुपया दूसरे की मेहनत के महासिल को छीन के ले आता है, रुपया बढ़ता रहता है, इस निजाम को रिबा का निजाम कहा है। इसका तर्जमा हुआ सूद। अब बैठे हुए हैं साहब ये बरसों से, क्या कर रहे हैं हमारे यहाँ के मुस्तदहीन कराम के, कौन सा सूद हलाल है, कौन सा हराम है, यानी खंजीर का किस हिस्से का गोश्त हराम है और किस हिस्से का जायज। अरे ये इस चीज ने ये चीज उलझन पैदा की है। तर्जमा किया उसका सूद, सूद यहाँ हमारे यहाँ देखा पहले तो वो महाजन होता था ना, ब्याज वाला। तुझे में यही हुआ कि किसी से कर्जा दिया जाए और उस कर्जे के ऊपर कुछ दिया जाए तो ये तो सूद होता है, ये लेना हराम है। वो कर्जा देने की बजाय अगर 1000 रुपए का जमीन का टुकड़ा खरीद के तुम्हें दे देता है तो उसकी आधी बटाई ले जाता है, ये हलाल है। वो देखा एक तर्जमे ने कहां पहुंचा दिया आप, रिबा का तर्जमा निजाम सरमायादारी कीजिए, बात सारी हल हो जाती। वो निजाम जिसमें रुपया जो है वो बढ़ता है बगैर मेहनत के, ये रिबा का निजाम है, इसे आज कैपिटलिज्म, इसे आज सरमायादारी कहते हैं। ये निजाम हराम। कुरान करीम ने सिर्फ एक निजाम है जिसके मुतल्लिक कहा है कि अगर इससे तुम बाज ना आए तो खुदा और रसूल की तरफ से ऐलान जंग होगा तुम्हारे खिलाफ। एक निजाम है ऐसा, ऐलान जंग। तो आप देखिए कि वो सवाल तो ये नहीं था कि बैंक का सूद हलाल है और फलां सूद हराम है, वो तो दो मुतजाद निजाम है आपके यहाँ। एक पुरानी निजाम है और उसके बरअक्स ये निजाम है जिसे आज की इस्तलाह में कैपिटलिज्म या सरमायादाराना निजाम कहते हैं। निजाम न कहिए तो तशरीह कुरान ने कर दी कि मेहनत अगर करता है कोई तो उससे उसको कुछ मिल सकता है। जब उसने कहा कि जो मेहनत नहीं करता उसे कुछ नहीं मिलता तो उसके माने ये है कि खाली रुपए के ऊपर कुछ नहीं मिल सकता। तो मैंने अर्ज किया कि इस्तलाह उस जमाने में ये राइज नहीं थी, इसलिए कुरान ने इस्तलाह के तौर पर इस्तेमाल किया। उस जमाने की इस्तलाह ही ये थी। इतना बड़ा इंकलाब जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में लाया गया, किस माशरे के या किस निजाम के खिलाफ था? उस निजाम के खिलाफ कि जिसमें बादल के निजाम की तीनों जान से एक जगह जमा थी, फिरौन मलूकियत का मुजस्मा, हमान मजबूत पेशवाइयत का नुमाइंदा, कारून निजाम सरमायादारी का हम, और उसके खिलाफ भेजा जा रहा है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को। दास्तान तो बड़ी लंबी चौड़ी है, जहां उनसे कहा जा रहा है कि जाओ फिरौन की तरफ, नौ तगा हदूद फरामोश हो गया है, सैलाब बन गया है, सरफिशी आ गई, तबाहियां मचा रहा है, बहुत सी हदायत दी गई हैं। ये सूरह तहा जो है 20वीं सूरत, इसके इब्तिदा में ये सारा दिया गया है, बड़ी हदायत दी गई हैं। कहा गया है कि ये समझो, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये क्या चीज है जो आप कह रहे हैं, कहा कि इन सातन अकाद उखी था, एक इनकलाब जो अंदर ही अंदर पकड़ा था, ये तबका जो है इसको अगर आप कुचलते चले जाएंगे, इसको पामाल करते चले जाएंगे, तो ये ठीक है आप इतना इंतजाम कर लीजिए कि उनका गला दबा दीजिए कि वो आवाज ना निकाल सके, उनके दिल पे तो जबर नहीं कर सकते कि वो महसूस भी ना करें। महसूस करता है ये तबका, उनमें एक तबका के जो पेशवाइयत का सुलाया हुआ होता है उसको तो एहसास नहीं होता, जिस तबके को एहसास होता है मलूकियत का आहनी पंजा उसके गले को दबा देता है कि आवाज ना निकलने पाए। क्या बात कुरान कि वो इनकलाब के जो अंदर ही अंदर गैर महसूस तौर पर चल रहा था, हम अब चाहते हैं कि वो नुमाया तौर पर सामने आ जाए, इसलिए आपको मूसा और हारून को आपको इसलिए फिरौन की तरफ भेजा जा रहा है कि जरा वो इनकलाब नुमाया तौर पे सामने आ जाए। क्या खसूसियत थी उस इनकलाब की, क्या था वो बादल का निजाम कि जिसको उलटने के लिए उसकी जगह दूसरा निजाम कायम करने के लिए ये इतनी बड़ी तकलीद हो रही है, क्या था वो? चार लफ्जों में बात बताऊ, ले तुझदा कुल्लो नफ्सिन बिमा तसहा, निजाम लिया जाकर कायम करो मौजूदा निजाम की बजाय, ताकि हर काम करने वाले को उसके काम का सिला मिल जाए। निजाम है ये, आप देखते हैं क्या निजाम काम करता है कुरान, कितनी बड़ी अहमियत उसके लिए, कितने बड़े दो पैगंबर एक तो ये काम बुनियाद है ये, तो इसके खिलाफ जो निजाम होगा कि बगैर तसाव के बगैर सही के जो कुछ वो हासिल करने वाला निजाम होगा वो इसके उलट है ना। शायद इसी सूरत में आगे जाके जो इसके उलट निजाम है जिसे हम जन्नती निजाम कहेंगे, जहन्नमी निजाम के मुकाबले में, इसमें है 20/112 وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ, इस निजाम की सदाकत पर यकीन रखे और फिर ऐसे काम करे कि ये निजाम कायम हो जाए, सलाहियत बस काम करे, तो उसका नतीजा क्या होगा? और फरमाइए जीजा निजाम, फला यखाफ जुल्मन वला हजमन, तो उसमें फिर इनको ना तो किसी की तरफ से जुल्म और इस्तेदाद और बेइंसाफी का खौफ होगा और ना ही ये कि कोई किसी की मेहनत को हड़प कर जाएगा। ये है जन्नत 20/112, तो कोई आपने फरमाया और फरमाया कि ये दो निजाम हैं जो एक दूसरे के मुतजाद हैं, आप इस निजाम के अंदर किसी किस्म की पैबंदकारी से इस्लामी निजाम नहीं कायम कर सकते, वो तो एक दूसरे के जिद है, वो रिबा जो है उसके खिलाफ तो ऐलान जंग कर रहा है, उस निजाम के अंदर आप इस्लाम करके इस्लामी कैसे बना लेंगे? वहां या तो फिरौन का निजाम रहेगा या साहब जद्दे करीम अलैहिस्सलाम का निजाम आएगा, यानी उनके हाथों से जो निजाम कायम हुआ, और उस निजाम के मुतल्लिक कुरान ने बता दी कि वो निजाम ये है कि हर मेहनत कर हर काम करने वाले को, काम करने वाले आप कहिए हम मेहनत क्यों करें, हर काम करने वाले को। अब जो मैंने कहा था ना कि ये भी हमारे यहाँ का तर्जुमा सही नहीं है जो आम तौर पे होता है कि उसे मेहनत कश को उसके मेहनत का मुआवजा मिल जाए, ये किड़े फरेब है, सारा दिन मजदूर जो काम करे, किसान साल भर तक काम करे, ये जो मजदूर का इस दिन की मेहनत का मुआवजा है वो कौन मुतय्यन करेगा कि कितने पैसे, मजदूर को नहीं मुतय्यन कर, ये काम पे लगाने वाला जो है वो मुतय्यन करता है, तो वो तो वही बात हो गई। और ये जो इकोनॉमिक्स है ना आजकल की इक्तिसादियात निजाम सरमायादारी का, उसमें ये चीज मुतय्यन होती है, इसे कहते हैं सप्लाई एंड डिमांड। मकान बनाने वाला सुबह जाता है यहाँ मार्केट के अंदर, यहाँ से वहां तक बैठे हुए होते हैं मजदूर, अब तो उनमें कमी आ गई, बाहर चला गया हमारा मजदूर जो है इतना तो कमी है, वरना आम तौर पे मार्केट में जहाँ सुबह को ये आपने देखा होगा इसके पेज पर, वहाँ मजदूर बैठे होते हैं, ये मकान वाला जाता है वो तो वो मजदूर जो है वो ये नहीं कहते कि आप हम तैयार हैं जाने को, बिखरते कि हमें 10 रुपए रोज दे, इसलिए तो बैठे होते हैं। 10 चाहिए इसको, एक वो अपनी शरारत कैसे मनवाएंगे। ये मकान बनाने वालों ने जो तय कर रखा है ना कि अब आजकल की दिहाड़ी इनकी ये होगी, वो दिहाड़ी होगी 30 रुपए हो 5 रुपए हो, अगर वो इतने ज्यादा है जिनमें से ये इसने चुनना है तो वो जिस शर्त पे ये चाहेगा आ जाएंगे इसके साथ, अगर वो कम है जरूरत इसकी ज्यादा है तो फिर हो सकता है कि वो थोड़ा सा इसके साथ इकरार करे, वरना ये मजदूर बेचारा उसको रखा हुआ ऐसा है कि वो तो हैंड टू माउथ जिसे कहते हैं ना, रोज उसको मिलता है तो बेबी बच्चों का पेट पालता है, एक दिन भी नागा पड़ जाता है तो कर्जा लेना पड़ता है उसको, वो इस हालत में होता है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता कि इसरार करे या इसके साथ तौदा करे कुछ कि नहीं साहब इतना नहीं इतना मैं लूंगा, वो तो गनीमत समझता है कि मुझे मजदूरी मिल गई, जितने पे भी ये ले जाएगा वो चलने पे तैयार हो जाएगा बेचारा। वो हमारे यहाँ एक पंजाबी मुहावरा हुआ करता था, वो बड़ी सही तस्वीर थी इसकी, पाकिन बगाड़िया रात दिया तूफिया ने, बड़ी अजीब चीज है अजीबा ने, रात दो भुखे तो जिस पास भी चीज दी बेचारा लग जाए। निजाम सरमायादारी ये है कि पहले इनको भूख से मारो और फिर आप अपनी सतह मनवाओ, कहने ना अपनी गाँव मनेगा, उसके पास वो तो बादल बात अल्टरनेटिव ही नहीं होता गरीब के पास, और फिर इनका ऊपर वालों का जथा होता कैपिटलिस्ट, हर जगह से वही भाव मिलता है, वही मजदूरी मिलती है। ये है जो एक निजाम है कुरान के निजाम के अंदर रहम कायम हुआ हुआ है, जिद उसकी, और जिस निजाम के मुतल्लिक कुरान ने कहा है कि खुदा और रसूल ऐलान जंग करेंगे इसके खिलाफ, ये निजाम है जो उस दौर में जिसे रिदा से तब्दील, और ये निजाम जलाने वाले ये लोग जो हैं, इनको कहा गया है मुतरफीन, तरफ के माने होते हैं जहां से मुतरफीन है, दूसरों की कमाई पर ऐसी जिंदगी बसर करने वाले, ये तर्जमा कीजिए, बात समझ में आ जाए, लेकिन ये करने देते थे तर्जमा, अब बात समझ में आई, वमा अरसलना फी करियतिन मिन नज़ीरिन इल्ला काला मुतरफूहा इन्ना बिमा अरसलतुम बिही काज़िरून, जब भी कोई रसूल आया हमारा, बात देखिए किस तरह समझ खुद आ जाती, तो ये जो इस निजाम के हामिल थे जो दूसरों की मेहनत की कमाई पर ऐश की जिंदगी बसर करते थे, इन्होंने मुखालफत की इस रसूल की, तो नजर आता ना कि वो रसूल को ऐसा निजाम ला रहा था जिसमें ये निजाम जो था इसकी बुनियादों तक उखड़ जाती थी और उसकी जगह कोई दूसरा निजाम आता था जिसे ये पसंद नहीं करते थे, ये था ना उनकी तरफ से थे। हमारे यहाँ कभी ये बताया ही नहीं जाता कि ये रसूल जो आते थे वो क्या निजाम लाते थे, वो इतनी सी चीजें हमारे यहाँ आती है ना कि ये बुतों की परस्तिश से रोकते थे, बुरी बुरी रस्मों से रोकते थे, निजाम का तस्वुर ही नहीं लिया जाता, आला मुतरफ हुआ इन्ना में माउर एक दफ ने सारी बात वाजह कर दी कि ये झगड़ा क्या चला आ रहा है, ये कश्मकश क्या थी, ये कशाकश क्या थी इन दोनों की आपस में, इसकी इस्तलाहें बदलेंगी, इसकी शक्लें कुछ बदलेंगी, इसकी रूह तो वही रहेगी, बदल के भेद कमाने में फिर से आते, अगर के पीर है आदम जवान है ला तो मुनाफ, ये रिदा है वो निजाम, और मुतरफीन है वो तबका जो दूसरों की कमाई पर सिर्फ आसूदा हाल, मुफलसी को भूख के भूख को तो खुदा अजाब करार देता है, सूरह नहल की आयत देख ली, खौफ और भूख खुदा का अजाब है, غنی ہونا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنا انعام گنا رہے ہیں. مترفین ہیں جو اس طرح سے دولت اکٹھی کرتے ہیں دوسروں کی محنت کے محاصل کو. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ معاوضہ نہیں ہونا چاہیے اس کا ترجمہ. ویجز جو ہیں یہ غلط ہے، یہ نظام سرمایہ داری کی پیدا کردہ چیز ہے. جو وہ مقرر کر دیں 3 روپے روز تمہارے، 5 روپے روز تمہارے، بھائی کوئی لحاظ کوئی حساب کیا؟ پھر یہی آج کا بھاؤ ہے، اس نے مقرر کیا ہوا. وہ جو اوپر کے لوگ ان کو امپلائی کرنے والے ہیں، تو جزا قرآن نے کہا ہے، قرآن نے ویجز نہیں کہا ہے، محنت کا ماحول کہا ہے. نظام یہ ہے، ہر شخص کو اس کی محنت وہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد اس نظام کے اندر یہ اب خود اپنی ضروریات کے مطابق لے کے جو زائد ہے وہ ان کے لیے دے دے گا کہ جن کی محنت ان کی ضروریات کو پورا نہیں کر رہے. یہ غصب نہیں، یہ ظلم نہیں، یہ لحب نہیں، یہ ایکسپلائٹیشن نہیں، یہ ہضم نہیں، یہ ظلم نہیں جو قرآن نے کہا ہے. ظلم اور ہضم کیا دو لفظ قرآن کہہ گیا ہے؟ نہ سیاسی استبداد، نہ معاشی سلب و نحب اصلاح. یہ مترفین کون سے؟ ابھی تک تو بات یہی آ رہی تھی کہ یہ جو کیپیٹلسٹ کا ترجمہ طبقہ ہے، سرمایہ داروں کا، بڑے بڑے دولت مندوں کا، یہی ہیں کہ مترفین جن کو کہا گیا ہے قرآن میں. قرآن عزیزان من بہت دور تک پہنچتا، وہ فرعون تک ہی نہیں رہتا. اسے پتہ ہے کہ فرعون کی فرعونیت جو ہے، ملوکیت جو ہے، یہ قائم ہی ہوتی ہے مذہبی پیشوائیت کے سہارے. یہ اس مقبول اور مظلوم طبقے کو تھپیاں دے دے کے سنا. آپ دیکھیے کہ اس کو بھی قرآن کریم نے کس طرح سے مترفین کہا. 47:23 وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ. وہی الفاظ جو اس آیت کے اندر تھا جو میں نے کہا کہ یہ رسول تیرے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہو رہا، اس سے پہلے بھی جتنے رسول ہم نے بھیجے ان کے ساتھ، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ یہ ماجرا گزرا کہ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، کہ اس طبقے کے مترفین نے اس کے خلاف بغاوت کی، سرکشی کی، اور کہا کیا؟ کہا یہ کہ انا وجدنا آباءنا علی امت و انا علی آثارہم مقتدون. انہوں نے کہا یہ کہ یہ روش جس کے اوپر یہ معاشرہ قائم ہے ہمارے اسلاف سے اسی طرح چلا آ رہا، اس لیے ہم اس میں تبدیلی نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ ہمارے نزدیک صحیح راستہ، صحیح ثواب کی راہ جو ہے وہ اسراف کا راستہ. یہ کون کہتا ہے؟ یہ کیپیٹلسٹ سرمایہ دار طبقہ تو یہ دلیل کبھی نہیں دیتا. یہ دلیل آتی ہی مذہبی پیشوائیت کی طرف سے کہ ہمارے ہاں اوپر سے یہ اسراف سے یہ چلا آ رہا ہے. اس میں تقدس ہے، یہ غیر متبدل ہے، یہی شریعت ہے، اس میں ہم تبدیلی نہیں آنے دیں گے. یہ ہمارے مذہب کے خلاف ہے، ہمارے مسلک کے خلاف ہے، اسلاف کی روش کے خلاف ہے. یعنی ان کی طرف سے دلیل یہ دی جاتی، عوام کے دل میں یہ چیز بتائی ہوئی ہوتی ہے کہ صحیح راستہ وہی ہے جو اسلاف سے چلا آ رہا ہے. قرآن کریم نے بار بار متعدد مقامات پہ یہ کہا، ان کی دلیل یہ دی ہے، اور اس کے بعد کہا ہے کہ خواہ ان اسلاف کے راستے سے بہتر راستہ بھی کیوں نہ تمہیں دیا جائے، تم جب بھی نہیں قبول کرو گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم اس کو سوچنے کو ہی تیار نہیں ہے کہ کون سا بہتر ہے اور کون سا بدتر ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. ہم اس مسلک کے متعلق کھڑے ہو کے سوچنے کے لیے بھی تیار نہیں، اور عوام کو یہ کہہ کے بھڑکا دیا جاتا ہے کہ یہ شخص تمہیں تمہارے اسلاف کے راستے سے بہکانے کے لیے آیا ہوا ہے. وہ کھڑے ہوتے. میں ذرا آگے وہ آیت آتی ہے، تفصیل تو وہاں بیان کروں گا. ایک فقرے میں یہ عرض کر دوں कि कोई ऐसी रविश, कोई ऐसा अकीदा, कोई ऐसा कदम, कोई ऐसा हलवा, कोई ऐसा मतलब जो इंसान की अक्ल व फिक्र को मरूफ कर दे, उसके दिए बुझा दे। इस्लाम के खिलाफ इंसानियत का बदतरीन दुश्मन। और ये दलील जो है ये है कि हम सोचने को तैयार नहीं, तुम दलाइल दे रहे हो, उससे समझा रहे हो, हम तो इसके मुतल्लिक ये ओपन टू क्वेश्चन ही नहीं हमारे नजदीक। इतना बड़ा मुसलमा है कि हम तो इसके लिए सोचने को भी तैयार नहीं। ये कौन सा तबका, वहिन्ना अला आसारे ही मुक्तदून। ये देखिए लफ्ज जो है इक्तदा, मुक्तदा, मुक्तदी, ये इस्लाहत ही सारी हमारे यहाँ की मदद की। ये तबका है जिसको कुरान मुतरकी कर, शायद दिल में यह ख्याल पैदा हो कि इनके पास तो कुछ सरमाया होता ही नहीं, इन्हें कैसे ये कह दिए, ये तो कोई पैदा ही नहीं कर। कौम या मुल्क की प्रोडक्शन के अंदर इनका हिस्सा ही कोई नहीं होता, दूसरे कमाई करते हैं, उसकी कमाई पर इनका गुजारा होता है, उनसे बेहतर जिंदगी बसर करते हैं। वो मजदूर तो सारा दिन भर जाता है बेचारा पैदल चल चल के टोपी उठा के, इनके यहाँ मोटरें भी होती हैं, लेकिन उन्हें भी लगी हुई है। क्यों मुतरफीन का है? तो सवाल इसकी नहीं है, इसका नहीं है कि हम किस तबके को कैपिटलिस्ट या सरमायादार कहते हैं। बुनियाद उसकी ये है कि जो प्रोडक्शन के अंदर कौम के हिस्सा नहीं लेता, प्रोड्यूस दूसरे करते हैं, पैदा दूसरे करते हैं, और ये बगैर काम किए, बगैर मेहनत किए हुए उनकी पैदावार से ले जाता है, और जो फिर बगैर मेहनत के लेता है तो फिर तो पूछे ही नहीं। मेहनत वाले का तो कुछ मुकर्रर है, बेचारे का जो मिलेगा, इनकी तो आधी कोई नहीं होती, लिए चले जाओ, लिए चले जाओ। कहा ये क्या रोम है इन मुतरफीन को, जिसकी बिना पर ये सरकशी से उधर आते हैं, हर रसूल की, हर इस पैगाम देने वाले की मुखालफत से जो उतरते हैं, इस गाने बादल के ऊपर ये उतरते हैं। कहा वो ये बात, ये मैंने इसका रेफरेंस दिया था 45:23। अच्छी बात, पहले अगले चार नफ ले आऊंगे, ये दलील इनके पास क्या होती है? नहीं दलील नहीं, गाने बादल क्या हुआ, आलू नहनो अक्सर औलाद। हमारा इतना माल हमारे पास, उस जमाने में क्योंकि कबायली जिंदगी होती थी, खानदान की जिंदगी, इसलिए जत्था अपने कबीले पर तक महदूद होता था। जिसका कबीला बड़ा हो उसकी बड़ी ताकत होती थी। आज के दौर में वो कबायली जिंदगी नहीं रही, अब पार्टी सिस्टम हो गया। जिसके साथ वोटर ज्यादा, जिसकी पार्टी ज्यादा मजबूत हो, अब यूं तर्जुमा हो जाएगा इसका, आज के दौर में जत्था जिसको कहते हैं आप। कहा क्या कह रहे हो हमें कि हम तबाह हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे, क्या कह रहे हैं आप? हमारे पास इतनी मारे दौलत, हमारा जत्था इतना मजबूत, हमारा बाल बीका नहीं कोई करता। अगले नहनु के मुअज़्ज़बीन, पहले मैंने कहा है ना कि यहाँ पहली बात, हमारा कोई बाल बीका नहीं कर सकता। एक इसमें अगली बात भी है, वो जरा दो मिनट के बाद अर्ज करूंगा कि दो तीन आयतें और हैं मुतरफीन के मुतल्लिक, वो मैं पहले पेश कर दूं ताकि बात समझ में आ जाएगी मुतरफीन है क्या। तो पहले तो हमने देख लिया कि दूसरे की मेहनत को तलब करके, एक्सप्लॉयट करके, खुशहाली और आसूदगी और ऐश परस्ती की जिंदगी बसर करने वाले, ये है मुतरफीन का तबका। वो दौलत की बिना पे हो या मजहबी पेशवाई, कोई भी तबका जो प्रोडक्शन के अंदर हिस्सा नहीं लेता और दूसरे की प्रोड्यूस की हुई के ऊपर तानाशाही की जिंदगी बसर करता है, मुतरफीन के अंदर आ गया। कुरान कहता है कि इसका नतीजा तबाही और बर्बादी होता है। ये तो गनीमत है कि ये तबका मौजूद रहता है, उनकी आपस में ही जो रकाबतें होती हैं उनको फैलने नहीं ज्यादा देता। वरना आप सोचो किसी कौम में अगर काम न करने वाला तबका जो है वो आम हो जाए तो कौम तो डूबी उसी दिन। वो कहता ये है कि इससे अगर तादाद की कसरत ना भी हो इनकी, इस निजाम के अंदर ये तबका जो जिसको जिसका खून निचोड़ा जाता है, कमजोर से कमजोर कर किया जाता है, कौम सारी कमजोर हो जाती है उसके बाद। अब देखिए तबाही वाले तबके के मुतल्लिक क्या बात। 17:16 वायदा रजना अनहोने का करियत अमर ना मुतरा थी और फसा पूछी है, कहता तबाही करीब आती जाती है। तो ये नहीं कि ये उससे ये सोचने के साथ इसका नतीजा तो तबाही है इसलिए हमें बाज आना चाहिए, नहीं, वो और कोशिश करते हैं इससे। एक इंडस्ट्री फेल होने लगती है तो दो और लगा देते हैं कि ये लाइन ज्यादा अच्छी। अगर उनके यहाँ इतने इतने पहले सीख जाए कि सिनेमा हाउस जो है ये किराया कम देते हैं तो आप देखते हैं उनको गिरा गिरा के फ्लैट बनाने शुरू कर देते हैं। क्यों? हिसाब कर लेते हैं कि इससे ज्यादा सरमाया आता है। क्या कहते हैं पूरा, कहता तबाही के आसार आते हैं तो बजाय इसके खड़े होकर सोचते हैं कि जिस निजाम का नतीजा है वो और ज्यादा बढ़ जाते हैं इसके अंदर और तरीके सोचने लग जाते हैं। सहाबा अलै हल कौलो सदम्बर ना हो तदवीरा, क्या अल्फाजियां आए हैं। हाँ ये ठीक है, ये अपने अपने मकानों को या ये मैं सिनेमा हाउस कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ यही ये भी हो रहा है और भी यहाँ हो रहे हैं, ये गिरा गिरा के और उसके लिए फ्लैट बांध रहे हैं। तो कुरान के अल्फाज अजीब है, कहा कि हम उससे बुलडोजर फेर दिया करते हैं। क्या लफ्ज है कुरान के, इनको पता नहीं है, ये समझते हैं कि इसमें कुछ कमी हुई है, इसमें कुछ इशारा हो रहा है, दूसरी लाइन तैयार कर लो। इन्हें पता नहीं है कि इस निजाम के जरिए जो तबाही आया करती है ठीक नफर ना हो तस्वीरा तो उसके ऊपर तो बुलडोजर दे जाया करता है। और एक और जगह है और बड़े खूबसूरत अंदाज में 21:11 वो कहता है ये तबाहियां जो हैं 21:11-12 वो जो कहा था ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कि ये इंकलाब ये तबाहियां ये तब्दीलियां आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस तौर पर आती रहती हैं, इन्हें वार्न किया जाता है कि कैंसर के जरासीम अंदर हैं तुम्हारे यहाँ दाखिल, परवाह नहीं करती कि मुझे तो कोई बुखार भी नहीं हुआ। पता उस वक्त चलता है कि जब उसके बाद वो खून के खतरे का एनालिसिस करके और उसको बैठकों के नीचे रख के बताते हैं कि इतने परसेंट हो गया, अब कोई शक्ल बचने की नहीं है। हम कहता है यूं वो तब्दीली महसूस तौर पर सामने आती है वरना गैर महसूस तौर पर तो बहुत पहले से करी हुई होती है। मकान का सामना मिन करियत इनकानत जालिमत वानशाना बादहा कौमन आखरी, कहा तारीख के और रात को पलट के देखो कितनी कौमें तुम्हें नजर आएंगी, बड़ी बुलंद ताजीज बड़ी दौलतमंद कुवत और हसमत बहुत ज्यादा, लेकिन उसके बाद तुम देखोगे इस कौम का नाम और निशान तक मिट गया या उसकी सिर्फ दास्तानें बाकी रह गई, उनकी दौलत और हसमत और मुल्क और रकबे के ऊपर कोई दूसरी कौम आ गई। यूं तबाही वो फिर थी, कहा कैफियत उनकी ये थी कि यह तबाही उसी दिन नहीं आ गई थी। फलम्मा अहसू बासना, क्या बात है कुरान के अल्फाज, गैर महसूस तौर पर ये चली आ रही थी, हम वार्म कर रहे थे इसको, इनकी समझ में बात नहीं आती थी, परवाह नहीं करते थे। जब वो महसूस तौर पर सामने आके खड़ी हो गई इधर हम बिन हजर कुरूम तो इन्होंने भागना शुरू किया कि बच जाए इस तबाही से किसी तरह से। क्या बात है, और सुनिए अजीजा ने मन किस ड्रामाई अंदाज में कुरान बयान करता है कि इन्होंने भागना शुरू किया, ला तुर और हमारे कानून मकाफात अमल ने पीछे से आवाज दी मत भागो, भाग के कहीं नहीं सुन जा सकते, अब भाग कर कहीं नहीं जा सकते। हमारे तो इस दौर में अजीजा नेमन की मिसालें मौजूद हैं कि फिर मुजरिम भाग कर कहीं नहीं जा सकता, वर्जे हूं पलट कर आओ, कहां पलट कर आओ, इला मा उतरिफ तुम ही है, अपने उन गुलामों और माल और दौलत की तरफ के दूसरों की कमाई से समेट समेट के तुमने जो इकट्ठे किए आओ वापस, वहीं आओ वापस, वामा खा के ने तुम और बड़े बड़े महलात जो तुमने तैयार किए हुए थे, आओ वापस वहाँ पहुँचो। क्यों वहाँ पहुँचो? लाला तुम तो साधुन, ताकि तुमसे पूछा जाए कि ये किसकी मेहनत की कमाई से जिससे ये इस कदर बुलंद महल खड़े हुए, इनकी बुनियादों में किसकी हड्डियों का चूना है, इनके पेंट में किसके खून की रंगीनी शामिल है, ताकि पूछे हम तुमसे, जवाब दो। चलो वापस, है पूछने वाला, तुम समझते थे को पूछने वाला नहीं है। आजू जावा इलाना इन्ना सुन्ना जालिमीन, वहाँ इसके सिवा चारा नहीं होगा कि एतराज करें कि हाँ सर ये सब हमने जुल्म और एक्सप्लॉयटेशन से कर, लेकिन उस वक्त इस एतराज का कोई फायदा नहीं। समाज जालत इनका दावा हूँ, वो कहते चले जाएंगे उस वक्त, लेकिन कहने का उस वक्त क्या, देखो अजीरा नमान देखिए क्या अल्फाज है, हत्ता जालना हूँ हसीदन खामिदीन। नतीजा ये हुआ, दो लफ्ज आए हैं बड़े ही एक्सप्रेसिव हैं, अंजाम क्या हुआ इनका, हसीदन कटी हुई खेती, उजड़िया है खेत इनके अंदर है, कटी हुई खेती, खामिदीन बुझा हुआ सोना, नाम क्या है, वकालू नहनु अक्सरों वालों का औलाद है, बड़ी दौलत है बड़ा जत्था है, व मा नहनु बेमुअज़्ज़बीन, बड़ा जामिया लफ्ज़ है, हमारा कोई बात दीदा नहीं कर सकता जिसे कहते हैं। इस दुनिया के अंदर तो बिल्कुल ये सामने चीज है कि वो उनको ये गम होता है कि हमने इतने इंतजाम कर रखे हैं रुपए के जोर पर, अपनी पार्टी के जत्थे के जोर के ऊपर, बोल नहीं तो सकता हमारे सामने, यहाँ वो है गाँव। इनसे कहा जाता है, अजीजा ने मन बहुत ही गौर से सुनिए, मैं तो जो अभी साथ से आता हूँ पूछ ही नहीं, इतने हकायक सामने आ जाते, 18/36 उससे कहा जाता है कि ये ठीक है तुम कहते हो, यहाँ मैंने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि कोई हमारा बाल भी किसी की गिरफ्त में नहीं, हमारा कुछ नहीं होगा हमारा, बाकी रहा उससे कहा जाता कि भाई जिंदगी यही तो खत्म नहीं होती, आगे भी चलती है, खुदा के यहाँ भी जाना है, मकाफाते अमल तो वहाँ भी होंगे, वहाँ क्या सूरत होगी तुम्हारी, क्या अल्फाज है, वमा अजुन्नो अजुन्नो सायता सायन, कहा कि भाई पहली बात तो ये है कि जो दिल इनके दिल के अंदर होती है कभी कभी जुबान पे आ जाती है, छोड़ो मियां ये बातें पुराने जमाने के लोगों की बातें हैं, और कहाँ की क्यामत और कहाँ का वो अजर और कहाँ का वो नजर, माँ अजुन उसका ये वाकई ये जो कुछ करते हैं वो इस माशरे में रहने की वजह से अपने आप को ये मुसलमान या ये कुछ कहते रहते हैं, दिल में उनके कानून मकाफात अमल का कभी ख्याल ही नहीं गुजरता, यानी ये चीज के दूसरे की मेहनत का जो मैं देता हूँ ये कि एक एक खतरे का मुझे देना पड़ा हिसाब, कभी उनके दिल में ये बात नहीं गुजरती, इसी का नाम है इनकार, आखिरत की जिंदगी से इनकार, इकरार के तो माने ये हैं कि ये मालूम हो कि मुझे इसका हिसाब देना है, जो अगर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा था कि मलूकियत और खिलाफत में फर्क क्या, कहने कि मैं तो इतना जानता हूँ कि खिलाफत ये है कि पूछा जाएगा मुझसे कि कहाँ से लिया था और कहाँ खर्च किया था, अगर खुदा के मेयार के मुताबिक मैं जवाब दे सका तो मैं खलीफा हूँ, वरना बात बड़ी मेयारी चीज। तो कहा पहली बात तो ये है साहब यही छोड़ो पुरानी दास्तानें हैं इन लोगों के कहने की, क्या बताओ खुदा के यहाँ जाना, कहा कभी कभी ये ख्याल आ ही जाता है ना, तो तुम मुतमिन रहो, ये है बात अजीजा ने मन से मैं कह रहा था गौर से सुनिए, वाला इन रोजितु इला रब्बी लअजदन्ना खैरम मिन्हा मुनकलबा, और अगर जैसा तुम कहते हो जाना भी पड़ा ना खुदा के हाँ, मैंने ऐसा इंतजाम कर रखा है कि मौला उठे भी मौज ही मौज लुटांगे, अभी माफ रखिए इससे बेटर लगने लगे, वहां भी मुतमिन रहो खैर रखो, मैंने इसका भी इंतजाम कर रखा है कि वहां भी हमारे लिए ऐसी ऐसी होगा, तुमने देख लेना, ये क्या इंतजाम इसने कर रखा है, वो जो मजबूत देशवासियत बताती है ना कि जिस तरह से जीता है कमाई करो, साल के बाद 2.5% उसमें से दे दीजिए, बाकी सारा माल पास हो जाता है। मैंने ये कर रखा, मैं दे देता हूँ उसमें। और ज्यादा बोझल हो गया, एक मस्जिद बना दीजिए, जन्नत में मोतियों का घर मिल जाएगा। फलान दारुल खराब के पैसे दे दीजिए, न्याज बांट दीजिए। अंदाजा लगाइए पुराने करीम किस तरह दुखती रक्त को पकड़ता है। वो कहता है कोई बात नहीं, अब्दुल को असल बात यही है कि मुझे इसमें यकीन नहीं। यानी ये तो कहा जबान हाल से कि कैसी ये दुखी ये होती है। लेकिन वो कहता है कि अगर जैसा तुम कहती हो वो भी जाए ना, तो मैंने उसका भी इंतजाम कर रखा है। मैं इसमें से खैर खराब के चने बांट देता हूँ, सऊदियाँ दे देता हूँ, फकीर को पैसे देता हूँ, न्याज बांट देता हूँ, मस्जिद बनवा देता हूँ, और आप देखेंगे। और कर लिया आपने इस हवाले को तो कितनी दफा ही आपने यहाँ दर्ज कीजिए, कितना बड़ा ये फरेब नफ्स है। और फरेब नफ्स खुद अपना खाया हुआ नहीं है। हर वाद में हमें ये बताया जाता है, जिसने जहाँ मस्जिद बना दी जन्नत में उसका मौसमों का घर बना, 2.5% दे दिया, बाकी आप देखिएगा इनके यहाँ जन्नत के मुतालिक। यानी वो नजर आता है कि वो काम है नेक जो अमीर ही कर सकते हैं, सदका और खैरात और ज़कात में से और हाजिर, और उसके बाद फिर ये मस्जिदें बना देना, ये कि यतीम खानों को भी दे देना, इनके दारुलूमों को दे देना, ये रुपए वाला ये कुछ करेगा। यानी गरीब के लिए तो सवाब का काम बेचारा वो सिर्फ नमाज पढ़ने वाली बात है। अब बाकी जितने वो मुतय्यन तौर पर बताते हैं ना जिसके बदले में जन्नत मिलेगी, वो सारा दौलतमंद के लिए है, ये तो इनके लिए है जिसको पैसा कुछ नहीं खर्च होता, यानी होता ही नहीं इनके लिए। ये रखो ना इनको तो इसके अंदर मस्त रखो। ये जो कैपिटलिस्ट का जो काम ये करते हैं वो तो इस किस्म के होते हैं, सबका खराब देने वाले खुदा के साथ जो मामला करते हैं बड़ा अजीब मामला होता है। वो कहते हैं कि साहब ये हमने सौदा किया है, इसके अंदर अगर इतना नफा हो गया ना तो खुदा की मैंने मन्नत मान रखी हुई है। जेल में होगा कि इसमें से कहता होगा कि 10% मैं दे दूंगा, देते ही कहने के क्या मन्नत मान रखी हुई है। मैं क्या आएगा कि जे मैं तो 1,00,000 रुपया फायदा हो गया, मैं 100 लाख पड़ांगा। पैसा होते ही गरीब आमतौर से नफरी सुख रखता है, वो तो वकील है जो ये कह रहा है, खुदा के साथ भी वो सौदागरी कर रहा है। वरना अगर ये नहीं तो बताया यही जाता है दौलत मान से, जितनी जी चाहे दौलत आप इकट्ठी कर दी, सारी उम्र में एक साथ जी, सारी उम्र में एक मस्जिद यही बना दी साहब वहाँ का। आप देखिए क्या अल्फाज में बयान करता है साहब, अगर तो ये बात है ही नहीं, ईमान की बात तो ये है कि मैं तो मानता ही। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया तो मैंने वो इंतजाम कर रखा है। मान ये खुद फरेबी की इंतहा, निजाम सरमायादारी के अंदर दौलत की वजह से कोई काम ऐसा नहीं किया जा सकता कि जिसके बदले में खुदा साहब जन्नत दे। वो तो जहन्नम आश्रय ही जहन्नम का है, जन्नत जहन्नम के किसी गोशे में भी जन्नत नहीं होती, जिस तरह जन्नत के किसी गोशे में भी जहन्नम नहीं होती। जन्नत के अंदर जन्नत नहीं बनता, ये जो चीज है ना ये फरेब नफ्स। कुरान करीम ने यहूदियों की मिसाल दी, अजीब अजीब मिसालों से बात समझा जाता है। मेरा ख्याल है वो सूरह बकरा की आयत है, गालिबन 2:85, बड़ी अजीब चीज। कहा कि तुम तो वो, ये बिल्कुल वही है जो मैंने अभी मिसाल दी है ना अपने नाम की, कि कोई बात नहीं है मैं सदका दे देता हूँ, यतीम खाना प्याओ बना देता हूँ और यतीम खाने को दे देता हूँ, मस्जिद बनवा देता हूँ, ये सारा कुछ, और इससे जन्नत खरीद देता है। कहा इन यहूदियों की ये सूरत है कि वो अपने हाथ से गरीबों को पहले अपने बस्तियों से निकाल देते, वो निकाल देते थे तो दूसरे लोग जो थे वो उनको पकड़ के ले जाते थे। उस जमाने में गुलामी होती थी ना, जो भी इस किस्म का अपनों के हाथ से धत्कारा हुआ हो, जैसा कि भेड़ बकरी गले से अलग हो जाए तो कोई भेड़िया उसको उठा के ले जाता है, उन्हें ले जाते थे, तो गुलाम बिकारी करते थे। तो कहा ये करने के बाद फिर ये आपस में चंदे करते हैं कि भाई बड़ा ही एक स्वभाव का काम है गुलाम को छुड़ाना, आओ कुछ चंदा करें। चंदा करके तो उन गुलामों को फिर जाके छुड़ा के लाते हैं और बहुत खुश हो जाते हैं कि हमने तो जन्नत खरीद ली। कुरान कहता है इनसे कोई पूछे कि इन्हें जो घर से निकाल देना था वो भी बड़ा स्वभाव का काम था, खुद पहले उनको तुमने घर से निकाल के गुलाम बनाया और फिर सवाब हासिल करने के लिए जन्नत का टिकट खरीदने के लिए चंदे इकट्ठे करके गुलाम को छुला के लाते हो और यहाँ आके मस्त बैठे हो कि बड़ा हमने सवाब का काम कर लिया। अफदो में नूना बेबाज किताब रूना बेबाज, इनकी कैफियत ये है कि गुलामों का छुड़ाना तो वाकई नेकी का काम है लेकिन आजाद को गुलाम बनाना जो है ये इनकी निगाह में नहीं गुजरा कि ये कितना बड़ा जुर्म है। राबता खुदाबंदी के एक हिस्से से ऐसा इनकार, दूसरे हिस्से पर इस किस्म का इकरार या इकरार, फमार जजाओ मैं यफअलु ज़ालिक मिनकुम, तुम में से जो कोई भी ऐसा करेगा, यहूदी की बात नहीं यहाँ आ रही, तुम में से जो कोई भी ऐसा करेगा उसका नतीजा इसके सिवा कुछ नहीं होगा कि इस दुनिया की जिल्लत और खारी आ सकती है और कयामत में इससे भी ज्यादा शदीद अजाब। ये गुलामों को छुड़ा लेने का जो तुम अजर मांग रहे हो, इस अजर के मुकाबले में वो जो गुलाम बना देने वाला जुर्म है वो इतना ज्यादा वजनी है कि उसके मुकाबले में इसकी हैसियत कुछ नहीं रहती है जो तुम नेकी का काम कह रहे हो। ये चीज जो है आज इस किस्म की गुलामी तो नहीं रही, लेकिन बात बड़ी आसानी से समझ में आती है। पहले ऐसा निजाम कायम कर लेना कि जिसमें एक पूरा तबका मुफलिस और गरीब और मोहताज और खलाश हो जाए, मुसीबत ज़दा हो, और फिर उनकी गरीबी को मुफलिसी को दूर करने के लिए चंदे इकट्ठे करके उनके लिए कुछ रोटी का इंतजाम करना और जेन में ये समझ लेना कि ये हमने बड़ा ही नेकी का काम किया है सवाब का काम किया है। वो कहता है कि इस तबके को पहले इतना गरीब और मुसीबत बना बना देना जो था उस जुर्म के ऊपर तुम्हारा ध्यान नहीं गया, वो इतना बड़ा जुर्म है कि तुम ये जो अब कहते हो हमने सवाब और नेकी के काम किए हैं ये उनका इजाला नहीं करता, ये उसकी तलाशी नहीं कर सकता। वो बुनियादी चीज है, वही जो माने का ये जो काम देखी के हमें समझाए जाते हैं अजीजा ने मानी, ये मकसूद भी जात नहीं है, ये एक बुलंद मकसद के हासिल करने का जरिया है। टिकट खरीदना बड़ा जरूरी होता है सफर के लिए, लेकिन टिकट खरीद के घर में बैठे रहने से तो आप मंजिल मकसूद को नहीं पहुंच सकते। टिकट तो जरिया होता है सफर करने का, मंजिल पे पहुंचने का। ये जो काम आप नेकी के कह रहे हैं ये दरअसल जराए हैं एक बुलंद मकसद के हसूल का, और बुलंद मकसद ये है कि कस न दर्द दर्द हाँ मोहताज कस नुक्ता शरे मुबी नस्तो, बस मकसद ये है कि इस दुनिया में कोई शख्स किसी दूसरे का न महकूम रहे न किसी दूसरे का मोहताज रहे। अजीजा ने मन बस ये है बड़ा सही कहा है इसने कि नुक्ता शरे मुबी ई नस्तो, बस ये है मंजिल, ये है मकसूद मुंतहा मकबूल एम पर्पज। ये बाकी जितनी चीजें आपके यहाँ गिनाई जाती है ना सवाब की और नेकी की, इस मकसद के हासिल करने का जरिया है। अगर आप ये जरिए की चीजें जो है करते रहे और वो मकसद जो है वो हासिल ना हो बल्कि उसके बरक्स होता चला जाए, ये जरिए की चीज आपको क्या काम देगी, ये टिकट क्या काम देगी जिसको लेके आप घर में बैठे रहे हैं। ये है जो कुरान कहता है कि ठीक है इन मोहताजों की रोटी का इंतजाम करना एक नेकी है, लेकिन इनको पहले मोहताज बनाना जो है ये कौन सा इस्लाम, ये नेकी ने लहसल दे रहे हम तो मशर के बाद मगर नेकी यह नहीं है कि हमने अपना मुंह मशरे की तरफ कर दिया है या मगरे की तरफ कर दिया है, ये भी जरूरी है, लेकिन मैंने अर्ज किया ना ये जरिया है जराए है एक मकसद के हसूल के, مارگاہ الہی میں وزن جو ہوگا وہ مقصود کے حصول کا ہوگا, کہ وہ کتنا حاصل کیا تم نے. یہ ذرائع جو ہیں اس سے نہیں, جسے کہے بخشے جاؤ گے. میں ایک اور مثال بھی جو دیا کرتا ہوں, پرانی ہے کہ وہ جو ایک ترخانہ آپ نے لڑائی لگایا مزدوری سے, کہا کہ یہ کباڑ اور یہ کھڑکیاں بنانی ہے شام تک. اس نے کہا ٹھیک ہے, ہر لڑائی صبح کو آتا ہی ہے تو وہ اپنی وہ جو وہ اتنی سی سل ہوتی ہے وہ پتھر کی سلی پانی ڈال کے نا تو اس کے اوپر وہ رندا اور کبھی تیزی اور کبھی اس کو وہ تیز کرتا چلا جاتا ہے. یہ بھی ضروری ہے, لیکن اگر وہ سارا دن اٹھ کے یہ نندا اور تیزیاں تیز کرتا چلا گیا, شام کو کہہ کے جاؤ جی دس روپیے میرے کھلا لکھاؤ گے تھی. یہ پیسیاں تیز کرنا وہ کبار کھڑکیاں بنانے کا ایک ذریعہ تھا, وہ تو بنے کچھ نہ. رندے تیز کر دے رہے ہو تم, قرآن فریب میں نہیں کرتا. اس لیے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے وہاں کا بھی انتظام, غلط فریب نفس میں مبتلا ہو. یہ چار پیسے دے کے خیرات میں جنت لے لیتے ہیں. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. جنت اس کو ملتی ہے جو اپنا پورے کا پورا مال بھی اس کے ہاتھ بھیج دیتا ہے, اپنی جان بھی اس کے ہاتھ بھیج دیتا ہے. اس لیے اس نے کہا کہ انتظام داخل جو ہے کہ ہمارے پاس بڑا مال ہے, ہمارے پاس جتھا بھی بڑا مضبوط ہے, ہمیں یہاں بھی کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا, اور باقی رہی وہاں کی بات تو کوئی بات نہیں, ہم نے وہاں کا بھی انتظام کر رکھا ہے. کیونکہ میں نے کہا تھا نا پنجابی میں, مولا ایسا ہوتے بھی ایج ہی کرنے ہیں, ایسے بھی ایج ہونے ہوتے بھی اسی ایج کرنے میں اسی انتظام کر لیا ہے, اتوں کا پاک بنوا لیا ہے. نہیں عزیزا نے مان, قرآن اس فریب میں نہیں رہنے دے. باطن کے نظام میں میں نے عرض کیا ہے, اس کے اندر پیوند لگا کے تو جنت نہیں ملتا. یہ تو نظام پورا الٹنا ہوگا. باقی رہا کہا یہ کہتے دولت ملی اور یہ سب کچھ ملا, تو اس کے لیے تو کچھ قوانین مقرر ہیں. قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ولکن اکثر الناس لا یعلمون. وہی پھر وہ ترجمے کی غلطیاں اور تفسیر کی غلطیاں, کہ رزق کی کیا بات ہے, یہ تو اللہ کی مرضی سے معقوف ہے, جس کو چاہے زیادہ دے, جس کو چاہے کم دے. پھر یہ ایک ترجمہ کیا, ختم کر دیا ان کو. ان غریبوں سے کہا کہ تم کیا کہہ رہے ہو, شکایت کر رہے ہو کہ ہم غریب ہیں, ان کو اتنا زیادہ ملا ہوا. او بابا یہ تفسیر کو خدا کرتا ہے, خدا کے خلاف چیلنج کر رہے ہو, اس کے خلاف شکوا کر رہے ہو, توبہ توبہ کرو, استغفار کرو, کبھی زبان پہ نہ جانا, دل میں بھی یہ خیال نہ کرنا, یہ خدا کی تفسیر ہے. اس کو ترکا دیا, یہ خدا کی تصویر کر دیا ترجمہ لینا, یہ خیال تھا جسے وہ چاہتا. جب جسے چاہتا ہے تو انہوں نے یہ جو کہا تھا کہ ہمارے پاس مال و دولت بہت زیادہ ہے, یہ خدا کا کرم ہے, تو اس کے خدا کیوں کہا کہ یہ تو جہنم کا ایندھن ہے جو خدا ہی کا دیا ہوا تھا. تو ٹھیک ہے, پہلے وہ لکڑیاں دے کے جلا دیتا ہے, ان کو ڈال دیتا ہے اس کے اندر, خود ہی آپ یہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد کہتا کہ کیوں تم جہنم میں کیوں بیٹھے ہوا, تم نے خود ہی تو یہ کیا ہمارے قانون کے مطابق. ان غریبوں کو بتاؤ کہ ہمارا وہ قانون کیا ہے جس کی روح سے اتنی دولت مل سکتی ہے اور پھر وہ ناجائز بھی نہیں ہوتی. بتاؤ ہمارے ان غریبوں کو, یہ بتانے کی بات لنگے شاہ کا درد نہیں. باقی رہا ان کا یہ کہنا کہ اس دولت کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچ سکتے ہیں. ومام والکم ولا اولادکم باللتی تقربکم عندنا زلفا. کیا لفظ ہے زلفا, ایسی ہی ہیں. ہر ڈنڈے سے انسان آگے بھی بڑھتا ہے, اوپر چڑھتا ہے, اور وہ جو منزل ہوتی ہے اس سے قریب بھی ہوتا چلا جاتا ہے. کہا کہ یہ مال دولت اور اولاد اور جتھا, یہ وہ سیڑھی نہیں ہے جس کے ذریعے سے تم خدا تک پہنچ جاؤ. یہ نہیں, اللہ من آمنا و عمل صالحا, وہ اور ہی سیڑھی. اس بات پہ یقین کامل رکھو کہ غیر قرآنی نظام جہنم ہے, صرف اسی کا بتایا ہوا نظام جنت میں لا سکتا ہے, اور پھر اس کے مطابق کام کرو. صرف یہی نہیں کہ مان لو, کام کرو. اولائے کا لہم جزاؤ, بما عملو, یہ کام جو اس قسم کی کرو گے اس نظام کو قائم کرنے مستحکم رکھنے کے لیے, اس کا ہے وہ جزا یا بدلہ. بدلہ نہیں بلکہ نتیجہ اس کا, میں سمجھتا ہوں ترجمہ زیادہ بہتر, اس کا نتیجہ ہے یہ جزا. یہ بڑی عجیب بات کہی ہے, دگنا. یہ دگنا کیا ہے کہ یہ معاشرہ قائم کرنے کے لیے جتنی کوششیں کی جاتی, اور یہاں سے مغرب کی ویلفیئر اسٹیٹ اور اسلام کا جو معاشرہ ہے, قرآن کا جو معاشرہ ہے, اس میں بنیادی فرق آ جاتا ہے. کہا کہ اس سے معاشرے کے اندر تو یہ خوشحالیوں کی کیفیت, بے خوفی کی کیفیت, یہ سب پیدا ہو جاتی ہے. یہ اس کا ایک بدلہ یہ بھی ہے, لیکن اس سے خود انسان کی اپنی ذات کی بھی نشو نما ہوتی ہے صاحب. تو یہ دوہرا اس کا جزا ہے, اس کی دوہرا بدلہ, معاشرے کی خوشحالیوں اور افراد کی ذات کی نشو و نما جس سے انہوں نے اگلی زندگی طے کرنی ہے. صرف ویلفیئر اسٹیٹ اس کے بغیر وہ یہاں کا تو جگہ مل جاتی ہے آپ کو, اگلی نہیں مل جاتی. اور اگر یہاں کا معاشرہ ہی صحیح نہ ہو تو نہ یہاں ملتی ہے نہ اگلی ملتا. تو جزائز جس دماغ عمل, اور اس کی پہچان کیا ہے, وہم فل غرفات آمنون. دو ہی لفظ ہیں, غرفہ جامع لفظ ہے لفظوں کی زبان کے اندر. ریزا نے میں نے کہا تھا نا کہ ایک ایسی ندی صاف اور شفاف پانی ہو, لبا لب بھری ہوئی ہو, روانی میں اتنی تیز ہو کہ اگر کہیں ذرا سی بلند زمین بھی آ جاتی ہے نا تو وہ اس سے بھی گزر جائے آگے کی طرف. موانعات راستے کے اس کی رفتار میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ کرے, صاف شفاف پانی کی ندی بھرپور بھی ہو, ساتھ اس کی بھری ہوئی بھی ہو, اس کے اندر صاف شفاف ہونا, اس کی کثرت بھرپور ہونا, اور اس کی روانی میں اندر قوت کہ کوئی راستے کے موانعات اس کے افکار میں کمی نہ پیدا کر دیں, یہ سارا کچھ آمنونا اور اس کے ساتھ امن بھی نہیں. کہا یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں تو پھر اس کو آپ اپنے ایمان اور عمل صالحہ کا نتیجہ کہہ سکتے ہیں, اور یہ وہ جنت ہے جو اس دنیا کے اندر آپ کو حاصل ہو. باقی رہے یہ لوگ جو دوسرے طریقوں سے اتنا دولت و جتھا اکٹھا کر لیتے ہیں اور ذہن میں یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو خدا کا قانون ہے کہ اس کے نتیجے سے ہلاکت آتی ہے, ہم اس کو اس وہ نتیجہ پیدا ہی نہیں ہونے دیں گے, ہم مقابلہ کریں گے خدا کے قانون کا. کہتا ہے کہ والذین یسعون فی آیاتنا معاجزین اولئک فی العذاب محضرون. جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے قانون کو شکست دے دیں گے, ان سے کہہ دو کہ تم اس کے قانون کو شکست دے نہیں سکتے, ہو ہی نہیں سکتے کہ برف جو ہے وہ ٹھنڈک نہ پہنچائے وہ حرارت پہنچائے. تو جی لے آئے کر کے دیکھ دو, ہو نہیں سکتا کہ سنکھیا جو ہے وہ ممد حیات ہو جائے, ہلاکت آخری نہ ہو جائے. میں یوں ہی دیش کا افتادہ نکالے دے رہا ہوں, تم خدا کے قانون کو شکست کی عاجز نہیں کر سکتے, بہت بے بس نہیں بنا سکتے. یاد رکھیے تمہاری غلط روش کا نتیجہ عذاب ہوگا, وہ ضرور حاضر کیے جاؤ گے اس عذاب کے اندر, غائب کی بات نہیں. ہم سورہ السبا کی آیت 38 39 آیت سے ربنا تقبل منا, آیت نہیں ہے